नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 अमरीकी डॉलर पहुंची। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियासिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू जियासी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रपति पुतिन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वहीं ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से हो रहा है। इस सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास।
4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक और प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। ये 107.75 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक सप्ताह में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें कितने समय तक बनी रहती हैं, ये भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का यह प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
और इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स व्यापार मंच को भारत मंडपम में संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
मटेरियल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स आवर सप्लाई चेन्स विल बी रेजिलिएंट व्हेन दे रन बोथ वेज विद नॉन टैरिफ मेजर्स imposing higher export costs, in fact much more than the tariffs themselves, for 88% of the countries, we need to make market access easier, smoother. I urge BRICS member states and partner countries to open their markets while working together to simplify regulatory procedures and facilitate faster clearance of consignments.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भागीदार देशों का वो स्वागत करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत मलेशिया की रॉयल मलेशिया नेवी के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण में शामिल होगा। भारतीय नौसेना ने बताया कि इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र में पेशेवर गतिविधियां शामिल होंगी, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और संचालन सहयोग को बेहतर बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अमरीकी मानव रहित पनडुब्बी को निशाना बनाया है। उसने अमरीका की इस कार्रवाई को आक्रामक बताया। IRGC ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर अमरीकी सेना की मानव रहित पनडुब्बी सेलड्रोन को जब्त कर लिया है। उसने ये भी दोहराया कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद है और ईरान के नियंत्रण में है, और उन्होंने चेतावनी दी है कि जलमार्ग में किसी भी शत्रुतापूर्ण उपस्थिति को निशाना बनाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स फाइनल में आरना सबलेंका का सामना एलिना रिबिकीना से होगा। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सबलेंका ने जेसिका पेगुला को और एलिना ने कोको गॉफ को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 अमरीकी डॉलर पहुंची। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।